नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत का दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना कोई साधारण उपलब्धि नहीं है और इस पर हर भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री ने गुजरात में सूरत के ओलपॉड इलाके में आयोजित एक कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा, भारत हाल में दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इस उपलब्धि ने हमें इस अमृत काल में और अधिक मेहनत करने तथा अपने बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का भरोसा दिया है। ये कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, हर भारतीय इस उपलब्धि पर गौरव का अनुभव कर रहा है। हमें इस उत्साह को आगे भी बनाए रखने की जरूरत है। इस कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थी मौजूद थे। इसके अलावा एक व्यापक चिकित्सा शिविर भी उनके लिए आयोजित किया गया था। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कुछ लाभार्थियों से बातचीत भी की। उन्होंने सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए गुजरात सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि इस राज्य में डबल इंजन की सरकार होने का लाभ लोगों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को ग्रेटर नोएडा में IDF विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में 50 देशों के 1500 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने बृहस्पतिवार को यहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी। ये कार्यक्रम 12 सितंबर से शुरू होगा और 4 दिन तक चलेगा। कार्यक्रम का विषय पोषण और आजीविका के लिए डेयरी रखा गया है। रूपाला ने कहा, प्रधानमंत्री 12 सितंबर को इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। लगभग 50 देशों के प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। 4 दिन के कार्यक्रम में 1500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। रूपाला ने कहा कि प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह तथा अन्य केंद्रीय मंत्री भी शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात के मुख्यमंत्री भी 48 वर्ष बाद भारत में होने वाले इस वैश्विक कार्यक्रम में शामिल होंगे। महंगाई पर काबू पाने की कवायद के तहत यूरोपीय केंद्रीय बैंक ब्याज दर बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। इससे पहले अमेरिकी फेडरल रिजर्व दरों में बढ़ोतरी कर चुका है। हालांकि इस कदम से मंदी गहराने की आशंका भी जताई जा रही है। विश्लेषकों का कहना है कि यूरोपीय केंद्रीय बैंक की प्रशासनिक परिषद की बृहस्पतिवार को होने वाली बैठक में ब्याज दरों में बढ़ोतरी होनी तय है और अब केवल ये देखना है कि बढ़ोतरी कितनी होती है। बैंक ने जुलाई में अपनी आखिरी बैठक में 11 वर्षों में पहली बार दरें बढ़ाई थीं। इस दौरान बैंक ने दर को 0.5% बढ़ाया। यूरोप में मुद्रा स्फीति इस समय 2% के लक्ष्य से ऊपर चल रही है। कई अर्थशास्त्रियों ने इस वर्ष के अंत तक यूरो क्षेत्र के मंदी में डूबने की आशंका जताई है। मौजूदा मुद्रा स्फीति ने किराने के सामान से लेकर रोजमर्रा के सामान तक सब कुछ महंगा कर दिया है, जिससे आजीविका का संकट पैदा हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को कहा कि RBI को मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए राजकोषीय नीति और अन्य कारकों के साथ अधिक बेहतर ढंग से तालमेल बिठाना होगा। उन्होंने आर्थिक थिंक टैंक इक्रियर द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि मुद्रास्फीति प्रबंधन को केवल मौद्रिक नीति पर नहीं छोड़ा जा सकता, जो कई देशों में पूरी तरह से अप्रभावी साबित हुई है। वित्त मंत्री ने कहा, RBI को कुछ हद तक तालमेल बिठाना होगा। हो सकता है कि ये तालमेल उतना ना हो जितना कि अन्य पश्चिमी विकसित देश में होता है। मैं रिजर्व बैंक को कुछ बता नहीं रही हूँ, मैं RBI को कोई आगे का निर्देश नहीं दे रही हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए मौद्रिक नीति के साथ ही राजकोषीय नीति को भी काम करना है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल शुक्रवार को लॉस एंजलिस में हिंद प्रशांत आर्थिक मंच की मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेंगे। इस दौरान वह क्षेत्र में मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। गोयल ने कहा कि IPEF में चर्चा के दौरान सदस्य देशों के लिए अवसरों को बढ़ाने का खास तौर से जोर दिया जाएगा। साथ ही ये सुनिश्चित किया जाएगा कि चुनौतीपूर्ण वक्त में आपूर्ति श्रृंखला खुली रहे और कोविड महामारी या रूस यूक्रेन संघर्ष जैसे हालात के चलते व्यवसायों को नुकसान न हो। उन्होंने यहां संवाददाता से कहा, IPEF ये सुनिश्चित करने के लिए काम करेगा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र सुरक्षित और व्यापार के लिए खुला रहे। IPEF की शुरुआत 23 मई को टोक्यो में अमेरिका और हिंद प्रशांत क्षेत्र के अन्य भागीदार देशों द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। इस मंच का मकसद क्षेत्र में जुझारू क्षमता, स्थिरता, समावेशन, आर्थिक वृद्धि, निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। IPEF के 14 सदस्य हैं, जिनमें भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और अमेरिका शामिल हैं। रियल्टी क्षेत्र में बढ़ते प्रौद्योगिकी इस्तेमाल के बीच संपत्ति प्रौद्योगिकी कंपनियों में निजी इक्विटी निवेश इस साल की पहली छमाही के दौरान 5% बढ़कर $27 करोड़ पर पहुंच गया। रियल एस्टेट पोर्टल housing.com पर उपलब्ध आंकड़ों से ये जानकारी मिली। देश के प्रॉपटेक कंपनियों को 2009 से लेकर जून 2022 तक $3.42 अरब का निजी इक्विटी निवेश मिला है। प्रॉपटेक में पीई प्रवाह पिछले साल यानी 2021 में 35% बढ़कर $74.1 करोड़ हो गया। इससे पिछले साल यह $55.1 करोड़ रहा था। housing.com के अनुसार इस कैलेंडर वर्ष की पहली तिमाही में पीई सौदों की संख्या जनवरी जून 2021 की तुलना में 1.5 गुना बढ़ी है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।